अफसाने का उन्वान गाजी मर्द। रात को जब कभी कुत्तों के भौंकने या मुर्ग की बेवक्त अजान से चिराग बीबी की नींद उचट जाती तो वो दबे पांव अपनी कोठरी से निकलती और राह टटोलती हुई बाहर आंगन में अपने शौहर की चारपाई पर आकर आहिस्ता से बैठ जाती और उसके पांव दाबना शुरू कर देती। और फिर जब तक अलिया को दोबारा नींद के झोंके न आने लगते वो बराबर पांव दाबती रहती। अलिया उसके हाथों के गर्म गर्म लम्स का ऐसा आदि हो गया था कि इससे उसकी नींद में ज़रा खलल न पड़ता, बल्कि ऐसा आराम मिलता कि वो और भी बेखबर होकर सोता रहता। अगर कभी वो जाग भी रहा होता तो चादर के नीचे दम सादे पड़ा रहता। ये चादर दरअसल उसका तहमत थी जिसे वो मच्छरों से बचने के लिए रात को ओढ़ लिया करता था, मगर इससे उसका पूरा जिस्म नहीं ढकता था। अगर सर छुपाता तो पांव नंगे रहते। सुबह को जब अलिया बेदार होता तो चिराग बीबी उससे पहले जागी होती और आंगन में वुजू करने या कोठरी में नमाज पढ़ने में मशगूल होती। वो नमाज के अल्फाज इस तरह अदा करती जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, ख़ास तौर पर आखिर के दुआया फ़िक्रे अलिया को साफ सुनाई दिया करते। या पाक परवरदिगार, अपने हबीब के सदके इस अंधी मोहताज के सर के साईं को हमेशा हमेशा कायम रख। या पाक परवरदिगार, अपने हबीब के सदके इसके सब दुश्मनों को नीचा दिखा। या पाक परवरदिगार, अपने हबीब के सदके इसे हर बला से बचा। या पाक परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल कर, पहले मैं मरूं, बाद में वो मरे, आमीन। अलिया चारपाई से उठता, चादर को झाड़कर कमर पर बांध लेता। चादर का फटाका सुनकर चिराग बीबी जल्दी से कोठरी से बाहर निकलती और बड़ी लिजाजत से पूछती, मुझे बुलाया है जी? बाज़ दफ़ा अलिया हाज़र भी होता तो वो उसे गायब तसव्वुर करके आप ही आप बोलती रहती, मुझे ऐबों भरी को गले से लगाया, इसका अजर अल्लाह और उसका हबीब उसको देगा, मैं अंधी मोहताज किस लायक हूँ, मैं इसका बदला क्या दे सकती हूँ, मैं तो आग भी नहीं जला सकती, रोटी भी नहीं पका सकती, कपड़ा भी नहीं सी सकती, कोई घर का या बाहर का काम भी नहीं कर सकती। हाँ, एक पाँव दाबना है, लेकिन इससे क्या होता है। चिराग बीबी गांव की मस्जिद के बूढ़े इमाम की बेटी थी जिसकी माँ बचपन ही में मर गई थी। मौली साहब खुद तो बीना थे मगर बेटी की आंखें चेचक में जाती रही थी। मौली साहब ने बिन माँ की बेटी को बड़ी मुसीबतों से पाला था। गांव के सब छोटे बड़े उनकी इज्जत करते थे। गांव के सब नौजवान, बल्कि उनके बाप भी मौली साहब से कम बगदादी कायदा तो ज़रूर ही पढ़ चुके थे। जब इमाम साहब का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों को बुलवाया और उनसे बड़ी आजजी से कहा, मैं अपने पीछे एक यतीम बच्ची छोड़े जा रहा हूँ, वो कभी की ब्याहने लायक हो चुकी है मगर अभी तक उसका ब्याह नहीं हुआ। अगर मेरे पीछे भी वो यूं ही रही तो मेरी रूह हमेशा तड़पती रहेगी। मैंने उम्र भर आप लोगों की जो बुरी भली खिदमत की है, इसके बदले में अगर मेरी बेटी को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए तो इससे मेरी रूह ही खुश नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को भी इस नेक काम का अजर मिलेगा, इस दुनिया में भी, आखिरत में भी। और मौलवी साहब चल बसे। उनकी तजहीज़ व तकफीन के बाद गांव के बड़े बूढ़ों ने यह मसला पंचायत में पेश किया और ख़ास तौर पर नौजवानों को ख़िताब करते हुए कहा, है कोई तुम में से वो गाजी मर्द जो खुदा तरसी करे और इमाम साहब के एहसान का बदला उतारे। कुछ देर खामोशी रही, आखिर एक नौजवान की गैरत जोश में आई। वो था तो गरीब ज़िम्मेदार का बेटा मगर अपने मन चलेपन की वजह से हर काम में सब नौजवानों से आगे आगे रहता था। اس نے آگے بڑھ کر اس کار خیر کے لیے خود کو پیش کر دیا. یہ علیہ تھا. اس پر کئی بن بیاہی بیٹیوں کے باپ جو علیہ کو داماد بنانے کا خواب دیکھا کرتے تھے گم سم رہ گئے. وہ اپنے گاؤں کے نوجوانوں میں سے کسی ایسے شخص سے اس قربانی کی توقع رکھتے تھے جو ان کی نظر میں سیدھا سادہ ہو اور گاؤں میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو, نہ کہ علیہ سے جو اپنی کئی خوبیوں کی وجہ سے گاؤں بھر کے نوجوانوں میں انتخاب تھا. اور اس طرح چراغ بی بی علیہ کے گھر میں بس گئی. علیہ کو باپ سے ورثے میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا تھا. بڑی محنت سے اس پر کھیتی باڑی کرتا اور جو تھوڑا بہت اناج مل جاتا اس پر صبر شکر کر کے گزارا کرتا. بیوی کا کوئی خاص خرچ نہیں تھا. اسے زیوروں اور نئے کپڑوں کی تمنا بھی نہ تھی. وہ مسجد کے حجرے میں پلی بڑی تھی. روزہ نماز گویا اس کی گھٹی میں پڑا تھا. ابھی بچی ہی تھی کہ پانچوں وقت کی نماز بڑی پابندی سے ادا کرنے لگی تھی اور رمضان کے تیسرے روزے رکھنے لگی تھی. اس پر وہ نابینا بھی تھی. اسے سوائے اللہ کو یاد کرنے کے اور کوئی کام ہی نہ تھا. بہت سی دعائیں اس نے چھوٹی سی عمر ہی میں باپ سے سیکھ لی تھیں. ایک دو پارے بھی اسے حفظ تھے. علیہ کے گھر آ کر اس کے مذہبی جوش میں کوئی کمی نہ ہوئی, بلکہ عبادت گزاری نے کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر لی. اس کی کوٹری میں آٹھ پہر اس کا مصلی بچھا رہتا, جس پر وہ نمازوں کے علاوہ دیر دیر تک وظیفے بھی پڑھتی رہتی. اس کی کوٹری سے اکثر اگر اور لبان کی خوشبوئیں آتی رہتیں, ساتھ ساتھ یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم کا ورد بھی جو دھیرے دھیرے بلند ہوتا جاتا. ایسے میں اگر علیہ گھر آتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کسی خانقاہ میں داخل ہو گیا ہو. وہ خود روزے نماز کا زیادہ پابند نہ تھا, مگر چراغ بی بی کے اس مذہبی ولولے کو احترام کی نظر سے دیکھتا تھا. وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیا کرتا کہ ایسی پاک ہستی کے ساتھ مناقحت کے فرائض انجام دینا بھی عبادت سے کم نہیں ہے. علیہ نے تھوڑے سے اناج اور چارے پر گاؤں کی ایک بیوہ کی لڑکی رحمتے کو ہنڈیا روٹی اور گھر کے دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیا تھا. یہ لڑکی جس کی عمر 10-11 برس کی تھی محنتی تو تھی, مگر ساتھ ہی ساتھ شوخ اور چنچل بھی تھی. دن بھر چراغ بی بی کے ساتھ اس کی خوب گزرتی. چراغ بی بی اس سے خدا اور رسول کی باتیں کیا کرتی اور رحمتے اسے ادھر ادھر کے لطیفے اور چٹکلے اور گاؤں کی روز روز کی خبریں سناتی. گاؤں بھر میں صرف رحمتے ہی ایک ایسی لڑکی تھی جس سے چراغ بی بی اپنے دل کے راز کہا کرتی. رحمتے, میرا بابا کہا کرتا تھا, بیٹا صبر کر, اللہ کا کوئی مودی آئے گا, ضرور آئے گا, وہ تجھے خاک سے اٹھائے گا, وہ تجھے گلے لگائے گا. بابا کا کہنا سچ ہوا, آخر میرا شہزادہ آ ہی گیا. رحمتے, وہ یوسف سے زیادہ حسین ہے, اس میں پیغمبروں والی شان ہے, وہ غازی مرد ہے, اس نے میری خاطر گدائی قبول کی. گاؤں کا نمبردار اپنی بیٹی کو اس سے بیانا چاہتا تھا اور سینکڑوں بیگے زمین اس کے نام لکھ دینا چاہتا تھا, مگر اس نے مجھ ایب و بھری اندھی کی خاطر دولت کو ٹھکرا دیا. دھن دولت آنی جانی ہے, مرنے پر سارا مال زر یہیں رہ جاتا ہے, بس نیک اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں. رحمتے کہتی, چاگا بی بی, اللہ کی سو, چودھری علیہ بڑا گبرو جوان ہے, تو بڑی بھاگو والی ہے. اس کے گلے میں چاندی کا تعویذ کالے ڈورے میں بندھا بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اس پر چراغ بی بی جوش میں آ کر کہتی, رحمتے, ہے گاؤں میں کوئی اور نوجوان جو گھوڑے کی سواری میں, کشتی میں, کبڈی میں اس سے بازی لے جا سکے؟ فصل کاٹنے میں اس کا ہاتھ ایسی تیزی سے چلتا ہے جیسے پانی میں مچھلی چلتی ہے. جتنی دیر میں چار جوان فصل کاٹیں اتنی دیر میں وہ اکیلا ان کے برابر کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اس کے بال گنگریالے ہیں, اس کا جسم سڈول ہے. جب میں اس کے پاؤں دابتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ان باتوں کا سب سے اچھا وقت وہ ہوتا جب رحمتیں आंगन में चूल्हे के पास बैठी तवे पर रोटियां डाल रही होती और चिराग बीबी उसके पास ही चौकी पर आ बैठती। जब वो अलिया के बाद ऐसे कमालात जो जाहिर में नजर न आते बयान करती तो रहमते बेख्तियार कह उठती, अच्छा जागा बीबी। और जब चिराग बीबी बोलते बोलते थक जाती तो रहमते शुरू होती, सुना चाका बीबी आज रसूल्ला के यहाँ लड़की पैदा हुई, छोटी सी जैसे चुईया। नंबरदार की बेटी करीमा की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं आजकल, सुना है शहर से बैंड बाजे वाले बुलाए जाएंगे। रात मिट्टू की दुकान से 5 सेर तंबाकू चोरी हो गया। एक दिन रहमते रोज से ज़रा जल्दी ही आ गई, वो जोश में भरी थी जैसे कोई बड़ी अनोखी खबर लाई हो। जैसे ही अलिया खेत पर रवाना हुआ वो फूट पड़ी, सुना जाका बीबी हमारे करीब जो गांव है धूप चढ़ी, इसमें एक जमींदार उमरू रहता है, उसने नई नई शादी की है, खुद तो कमबख्त 60 बरस का है मगर दुल्हन 16-17 बरस से ज़्यादा की नहीं है। सब गांव वाले उसे बुरा कह रहे हैं मगर उसको किसी की परवाह नहीं, बल्कि उसने सबको जलाने के लिए दुल्हन का घूंघट उठवा दिया और बड़ी अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। सुना उसने 2 सफ़ेद घोड़े खरीदे हैं, एक अपने लिए एक दुल्हन के लिए। हर रोज़ सुबह को दोनों घोड़ों पर सवार होकर सैर को निकलते हैं। कभी बूढ़े को कोई काम होता है तो वो गुलनार को अकेला ही भेज देता है। सुना है कल गुलनार अकेली घोड़े पर सवार सैर करती हमारे गांव की दरवाज़ निकली। उसने गांव वालों से बड़ी आज़ादी से बातें की, कुछ लड़के उसके सफ़ेद घोड़े के पीछे हो लिए, वो सब उसको बड़ी हैरानी से देखते थे। उसका रंग मेमों की तरह गोरा है और बाल सुनहरे हैं, सुना है वो बड़ी खूबसूरत है। उसने रेशमी कमीज और शलवार पहन रखी थी, उस पर बड़े बड़े गुलाब के फूल बने थे, पाँव में जरी की जूती थी। उसने सुर्ख दुपट्टे को जिसके किनारों पर गोटा लगा था छाती पर बल देकर गिरा सी बांध ली थी। वो बड़ी शान से घोड़े पर बैठती थी जैसे कहीं की रानी हो। उसने हमारे खेतों की भी खूब सैर की और जागा बीबी चौधरी अलिया ने भी तो उसे देखा था, बल्कि कुछ बातें भी की थीं, शायद वो रास्ता पूछ रही थी। क्या कहा तूने, उसने देखा था, उसने बातें की थी? हाँ चाका बीबी, मेरे शहजादे ने? हाँ अलिया चौधरी ने चाका बीबी। चल चुप रहे, ज़्यादा बातें ना बना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो चौकी से उठी और राह टटोलती हुई अपनी कोठरी में चली गई। उस दिन उसने रहमते से और कोई बात न की। शाम को अलिया खेतों से वापस आया, घर पर वो ज़्यादातर खामोशी रहा करता था मगर इस शाम वो घर में ज़्यादा चला फिरा भी नहीं। पहले खामोशी से चारपाई पर बैठकर खाना खाता रहा, फिर हुक्का भरा और देर तक पीता रहा। इस अरसे में चिराग बीबी भी खामोश रही मगर जब अलिया सोने लगा और तहमत को चादर की तरह ओढ़ कर चारपाई पर लेट गया तो वो हसबे मामूल उसके पास आई और उसकी चारपाई पर बैठकर उसके पाँव दाबने लगी। मगर अभी 15 मिनट भी ना गुजरे थे कि अलिया ने कहा, चागा बस कर, मुझे नींद आ रही। अलिया के इस खिलाफ मामूल रवैये पर वो बहुत चकी रह गई। उसने एक दबी दबी सी आह भरी और फिर खामोशी से उठकर अपनी कोठरी में चली गई। थोड़ी देर के बाद उसकी कोठरी से या गफूर या रहीम, या गफूर या रहीम ये अल्फाज सुनाई देने लगे। ये वजीफा कोई घंटे भर जारी रहा। फिर चिराग बीबी हाथों से राह टटोलती उसकी चारपाई के पास पहुंची और बड़ी मुलायमत से उसके पाँव को जो चादर से बाहर निकले हुए थे छुआ। उसका जी चाहा कि वो चारपाई पर बैठ जाए और मामूल की तरह उसके पाँव दाबना शुरू करते मगर उसे जरूरत ना हुई और वो वापस अपनी कोठरी में चली गई। अब कोठरी से फिर आवाज़ आने लगी, जैसे कोई सरगोशी करता है। मुझ ऐबों भरी को गले से लगाया, इसका अजर अल्लाह और उसका हबीब उसको देगा। मैं अंधी मौदाज किस लायक हूँ, या पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदके मेरे सर के साईं को हमेशा हमेशा कायम रख। या पाक परवरदिगार उसके दुश्मनों को जेर कर, या पाक परवरदिगार उसे हर बला से महफूज रख। या पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदके जो कोई उस पर हुस्न का वार करे उसके हुस्न को गारत कर। या पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदके मेरी दुआ कबूल कर। या पाक परवरदिगार पहले मैं मरूं बाद में वो मरे, आमीन। 2 घंटे बाद वो अपनी कोठरी से फिर निकली और उसकी चारपाई के पास पहुंचकर उसके पैरों को टटोलने लगी, और ये इत्मीनान करके कि वो चारपाई पर बदस्तूर चादर ताने सो रहा है, फिर अपनी कोठरी में चली गई। अभी कुछ कुछ रात बाकी थी कि वो फिर कोठरी से निकली और साये की तरह चलती हुई अलिया की चारपाई के करीब आई और अपने गर्म गर्म हाथों से उसके पांव मलने लगी। फिर उसके पैंती ज़मीन पर बैठ गई और उसके दोनों पांवों के तलवों को चूमा। अलिया ने सोते में करवट बदली और अपनी टांगों को सुकेड़ कर चादर के अंदर कर लिया। फिर जब सुबह सादक नमूदार हुई तो चिराग बीबी की कोठरी से फिर आवाज़ आने लगी। अब की आवाज़ में गैर मामूली जोश था और वो मामूल से ज़्यादा बुलंद थी। उसने मुझ अंधी ऐबो भरी की खातर गदाई कबूल की, उसने मुझे गले से लगाया, मेरा शहजादा यूसुफ से ज़्यादा हसीन है, उसमें पैगंबरों वाली शान है।